لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت قوم لوط المرسلين صدق الله العظيم. مؤمنين يسور شعور هذا السلسلة جاری ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا میں نے 160 بھی آیت ہے. تو اب سلسلہ قوم لوط کا اللہ نے اس سورے میں کیا ہے شروع، اور جو آیت پڑھنے پڑھی ہے اس کا اس طریقے سے ترجمہ ہے: لوط کی قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. یہ قوم لوط کے بارے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کے گناہ کیا کرتے تھے. عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف جایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرا سورہ شعراء میں. قرآن میں قصہ بار بار بیان ہوا ہے، اور آج کل یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ خصوصاً اس قصے کو پڑھنے کی سخت ضرورت ہے. قرآن اس لیے اس قصے کو بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ ہمارے آنکھیں کھلے کہ ہم لوگ کس سوسائٹی میں جی رہے ہیں اس وقت. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. اچھا، اس میں بعض انبیاء کے بارے میں لفظ آیا بھائی، کیونکہ ان کی وہاں رشتے داریاں تھیں. ایک تو یہ تھے کہ وہ بہت محبت کرتے تھے، دوسرا تھا کہ وہ بڑے ہمبل تھے، انکساری کرتے تھے. اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ وہاں پر ان کے خاندان رہا کرتے تھے. تو یہاں پر جو لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، کیونکہ ان کی شادی وہاں ہوئی تھی، ان کی زوجہ وہاں کی تھی. تو اللہ نے اس طریقے سے ان کو اس قوم کا بھائی کہا. تو جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم میں لوگ اس طریقے سے اس عظیم گناہ کی طرف ہیں جا رہے ہیں، تو روکنا چاہتے تھے کہ کیا تم نہیں ڈرتے. یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے اسے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ہر رسول نے آگے کی بات کری کہ میں رسول امین ہوں اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یہ اسلام ہے، تقویٰ اختیار کرنا اور اطاعت رب کرنا، یہ اسلام ہے. بس یہ اس لیے یہ آیت بار بار اس سورہ میں آئی ہے. فتق العطیون کتنی بار اس سورہ میں آیت آئی ہے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بس میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کہا کہ ہمیں اس کا کوئی اجر چاہیے ہی نہیں، رب العالمین کے ذمہ ہے. ہم کو بھی سارے کام اخلاص سے کرنا چاہیے، زندگی میں فی سبیل اللہ کرنا چاہیے کہ کسی سے کوئی اجر کی توقع نہ ہو. اگر اجر کی توقع نہ ہوگی تو آپ کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. ہم سینٹر جاتے ہیں، ہر آدمی شکایت کرتا ہے میرے ساتھ میری قدر نہیں کری، یہ نہیں کرا. اور یہ چیزیں ہمارا دماغ سے نکل جانا چاہیے. جو بھی اجر ہے اللہ سے لے، جو بھی اجر ہو اللہ سے لے. پھر کیا کہا لوط علیہ السلام نے؟ اتاتون ذکران من العالمین، کیا دنیا بھر کے مردوں کے پاس آتے ہو؟ مردوں کے پاس آنا مطلب مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی بھی بات اس طرح بے حیائی کی بات کھول کے نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں جس طریقے سے زلیخا نے بلایا تھا، تو ہر چیز میں اللہ کی جو بات جب کرتا ہے تو نزاکت ہوتی ہے. بے حیائی سے اللہ کوئی بات قرآن میں کرتا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو ہم بھی جب کوئی بات کریں آپس میں تو بے حیائی نہیں ہو. تو اس خوبصورتی سے اللہ نے اس آیت کو پورا کر کرتون ذکرا من العالمین، کیا دنیا بھر کے مردوں کے پاس آتے ہو کہ جو اپنی جنسی خواہش کے لیے؟ تزرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جن بیویوں کو خلق فرمایا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے. दूसरी बात उन्होंने ये कही कि परवरदिगार तुम्हारे लिए बीवियां जो खल्क करें, माँ खल्क लखुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, जो औरतों के अंदर तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो खल्क करा है उसको तुम छोड़ देते हो। तो इसमें मीज़ा ने कहा कि इससे क्या मुराद है, खल्क लखुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी औरतों में जो खल्क करा है, मतलब औरतों में जो खल्क करा है उनके जो खास आज़ा हैं जो कि उनके लिए करें अल्लाह ने हलाल, मीज़ान के तहत उससे वो मुराद है। बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम तो हद से ही गुजरे लोग हो। तो दर हकीकत जो सोसाइटी में आज का जो इतना ज़्यादा हो गया है, आज का तो ये गुनाह इतना आम हो गया है, मर्द का मर्द के पास जाना, औरत का औरत के पास जाना, लेकिन इसको अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में बार बार इसको ज़लील तरीन गुनाह बताया है। मतलब अगर कोई इस्लाम के अंदर डेथ पेनल्टी, इसके अंदर अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया तो उसके लिए डेथ पेनल्टी, इतना सख्त गुनाह है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्द और औरतों का रिश्ता इस तरीके से बनाया है कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत है, और ये ज़रूरत इसलिए कि जो आजकल चला ना, क्या हमको सिर्फ कंपेनियनशिप चाहिए, मेन मेन के साथ कंपेनियन हो सकता है, वुमन वुमन के साथ कंपेनियन हो सकती है, तो नहीं, कंपेनियनशिप इससे मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि खल्क अल्लाह की, इंसानियत आगे बढ़े और इंसान आगे बढ़ता रहे। अगर आदमी और औरत होंगे तो अल्लाह खल्क करेगा इंसानियत को, अगर आदमी और रिश्ते ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंसान कैसे खल्क होंगे, किस तरह से आबादी बढ़ेगी। तो ये जो पनाह है ख़ास आर्गन्स आदमी और औरत के, इससे यही मुराद है कि अल्लाह सुनना चाहता है कि ये एक नेचुरल रास्ता है, अल्लाह इसको पसंद करता है, ये फितरत है इंसान की, और अगर आपने इस फितरत को छोड़ा तो सिवाय इस दुनिया में अजाब के आखिर अजाब के कुछ भी नहीं है। आज आप देखेंगे जो लोग इस सोसाइटी में पढ़े हुए हैं उनमें सिवाय HIV, डिप्रेशन, ड्रग यूज़, सुसाइड अटैम्प्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शैतान के भाई हैं सभी लोग, कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। कालू लम तंतही या लूतू लतकून मिनल मुखरजी, तो उन्होंने क्या कहा पलट के उस कौम ने जो कि इस गुनाह में मशगूल थी, उन्होंने कहा ए लूत अगर तुम इस तबलीग से बाज ना आओ तो तुम्हें हम निकाल बाहर करेंगे। वो पहले के ज़माने के लोग ये करते थे कि अगर बात पसंद नहीं आती थी तो या तो निकाल बाहर करते थे बस्ती से या संसार करते थे, ये दो के खास थे हथियार, इसको इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जितने भी अंबिया थे वो खुदा के सिवा किसी से डरते ना थे। तो क्या तो उन्होंने पलट के नहीं कहा गए मैं ये करूँगा वो करूँगा, उन्होंने पलट के दूसरे जवाब दे दिए, क्या कहा आला इन्नी ली अमलिकुम मिनल कालीन, लूत ने कहा कि मैं तुम्हारे इस किरदार से सख्त बेजार हूँ। अब इसमें भी बड़ी नज़ाकत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे बेजार हूँ, उन्होंने नहीं ये कहा कि मैं तुमसे खौफ कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने पलट के ये कहा कि तुम्हारे इस किरदार से मैं सख्त बेजार हूँ, मतलब तुमसे बेजार नहीं, हमको लोगों से बेजार नहीं होना चाहिए, लोगों के कुफ्र से बेजार होना चाहिए, लोग कोई काफी अभी होगा उससे अच्छे मिले, आप बेजारी जाहिर करें उसे कुफ्र से बेजारी जाहिर करें, आप चाहें उसको सिखाएं इस्तकलाल रखें, आप सिखाएं उसको, तो बेजार इंसान से नहीं होना चाहिए, बेजार उसकी आदत से होना चाहिए, हमको भी हमारी आदतों से बेजार होना चाहिए, जो हमारी बुरी आदतें हैं वो चाहिए हम देखें उसको कि हम उससे बेजार रहें, क्योंकि बुरी चीज़ बुरी होती है। रब्बी नजनी व अहली निम्मा यामलून, फिर इतने परेशान हो गए लूत अलैहि सलाम, समझाया लेकिन उनकी कोई बात समझता ना था, तो आखिरी में बेजार होकर उन्होंने परवरदिगार से दुआ करी, परवरदिगार मुझे और मेरे अहले यार को इन बदकारों से निजात दे दे, क्योंकि इतने परेशान हो गए थे, इतने शर्मिंदा हो गए थे, वो थक चुके थे, तो आखिरी उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे अहले यार को निजात दे दे इन लोगों से। सरकार ने कभी ऐसी बात नहीं करी, अहले यार ने कभी ऐसी बात नहीं करी, कभी नहीं कहा हम यहाँ से हम चले जाएँ यहाँ से, लेकिन ये अहले बैत का सब्र था जो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था, सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा, रहे हमेशा रहे। तो नजैना व आलहु अजमईन इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, तो हमने लूत और उनके अहल सबको निजात दी सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। तो उनके जो घर के लोग थे बस वही मोमिन थे, तो अल्लाह ने उनको निजात दे दी सिवाय उनकी बीवी की जो बुढ़िया जो थी वो पीछे रह गई, वो वहीं की थी लोकल थी और वो ईमान न लाई थी लूत अलैहि सलाम पर और बस्ती के लोगों के साथ थी, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको पकड़ लिया। तो हमको ये चाहिए कि हम हमारे घर में हर एक को चाहिए कि अपने ईमान को देखता रहे, ये नहीं कि किसी आलिम का घर है तो सभी अच्छे होंगे, हर एक का अल्लाह की निगाह हर एक पे रहती है, हर एक पे रहती है और हर एक को देखता है। नूह अलैहि सलाम का बेटा काफिर था, तो हर फर्द को अपना निगहबान होना है, हर फर्द को अपनी कोशिश करना है ताकि वो ईमान में दाखिल रहे, और इसलिए ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े और तफक्कुर करे ताकि वो उसका ईमान बाकी रहे। ثُمَّ دَمَّرْنَا آخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کری جب اتنا پریشان کرا تو پھر اللہ سے جب دعا کری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو ڈرائے گئے لوگوں پر بدترین بارش تھی۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ایک تو کیا کہ پہلے زلزلہ آیا تاکہ وہ ہلاک ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف زلزلہ نہیں لایا بلکہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، گرم پتھر تھے اور ایک کے بعد ایک تہے پہ تہے جمتی چلے گی پتھروں کی۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی، دو عذاب کیوں آئے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پہلے تم کو موت دے، اس کے بعد کہا کہ آپ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو اتنے پتھر برسے کہ بستی پوری دب کے ختم ہو گئی۔ خدا سے خوف کرے ہم، تھوڑا دن کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، انہوں نے جو حرکتیں کری تھیں اس کے بعد یہاں ہلاکت ملی، پھر برزخ میں ہلاکت، پھر آخرت میں ہلاکت، پھر ہمیشہ کی ہلاکت۔ ہم کو بھی خوف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارے گناہ ہم کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں ہم شیطان کے پیرو ہو جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن اکثر المؤمنین وان ربک هو العزیز الرحیم، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت مومن نہ تھی، اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو غالب اور مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اس میں بڑی بڑی آیا تھی کہ اس میں اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ ہم کو بھی خوف کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں، ہم کو غور فکر کرنا چاہیے ہمارے اندر کیا میں ایمان لا چکا ہوں، کیا وہ میرا ایمان ہے تو کتنا ایمان ہے، کیا میں منافقت تو نہیں رکھتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے ہمیشہ حاضر و ناظر میں خوف کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہ چھوڑ دو، کیا ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے خوف کرتے رہے اور امید کریں کہ اللہ ہم کو قیامت کے دن اور قبر میں یہ کہے کہ ہاں تم مومن تھے، یہ ہماری امید ہے، اور ہم ایمان پہ دنیا سے ساتھ جائیں۔ کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں شخص سو کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو گھر آئے گا تو ایمان چھوڑ چکا ہوگا۔ یہ حالت ہے، یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں لوگوں کے ایمان چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ لوگ شک کریں گے ایمان کی کہ ظہور ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ظہور میں تاخیر ہوگی، اللہ امتحان لے گا، تو لوگ اور چھوڑ کے بھاگیں گے۔ آج اس طریقے سے ہر طرف یہ گناہ چل رہا ہے، تو یہ سوسائٹی کا ماحول بتا رہا ہے، یہ سوسائٹی کا ماحول کیا کہ ایسے گناہ ایسے عام ہو گئے ہیں تو کتنا برا وقت ہے اس وقت انسان کا۔ ہم کو کتنا جاگ کے رہنا چاہیے، ہر طرح گناہ عام ہو چکا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں۔ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم کو سوچنا چاہیے؟ کیا ہم پروردگاری کتاب کو پڑھتے ہیں دھیان سے؟ کیا ہم کو اس سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں اس کا نور آئے کہ نہیں آئے؟ کذب اصحاب الایکۃ مرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اصحاب ایکا نے رسولوں کی تکذیب کی۔ یاد کیجئے کہ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یہ کہاں تھا ایکا؟ کیا تھا اصحاب ایکا؟ یہ ساؤتھ سیریا میں یہ لوکیٹڈ تھا، یہ شہر مدائن کے پاس، मदाइन बड़ी बस्ती थी जहाँ शोएब अलैहिस्सलाम रहते थे, तो उसके पास ही शहर था जहाँ पर के जंगल बहुत थे, तो काफ़ी वहाँ के लोग पैसे वाले थे, क्योंकि एक तो क्या था वो हाईवे पर था मक्का मदीना से लोग सीधे जाया करते थे, तो जब सीधे जाते थे बिजनेस के लिए तो बीच में शहर ही पड़ता था एक आ, और यहाँ पर खूब हर चीज़ अच्छी थी क्योंकि जंगल भी थे और जितने नेचुरल रिसोर्स थे सब थे, तो ये लोग बहुत पैसे वाले लोग थे और ये बिजनेस मैन थे। तो हुआ क्या कि इनके साथ के ये बिजनेस में डूब गए थे और ये बस मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मदीन से शोएब अलैहिस्सलाम को इस बस्ती में भेजा एक आम है ताकि वो उनको दीन का रास्ता दिखाए। तो इस तरीके से बात शुरू हुई, असहाब एक ने रसूलों की तकजीब करी, याद करो जब उनसे शोएब ने कहा क्या तुम डरते नहीं, अब इसमें शोएब कहा है अब भाई नहीं कहा है, इसकी वजह है कि शोएब अलैहिस्सलाम इस बस्ती के रहने वाले नहीं थे, वो तो इस चूँकि वो इस बस्ती के रहने वाले नहीं थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, तो अल्लाह ने उनको भाई नहीं कहा। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वअतीउन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल अमीन हूँ, तुम अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो, मेरी इताअत करो, बस ही इस्लाम है। बार बार आप देखें कुरान में यही कि आया है कि देखें शफात होती है, अपन शफात की बात करते हैं कि शफात होगी और शफात ज़रूरी है, शफात असली शफात वो है अहले बैत की कि हम उससे सीखें, हम उससे सीखें उनके और उनकी दुआओं से हम उनके रास्ते पर चले, ये असली शफात है। शफात ये क्योंकि अल्लाह तआला सुब्हान तआला बार बार कह रहे हैं अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो, क्या मतलब इसका, हमको चाहिए कि हम तक्वा अख्तियार करें, गुनाहों से दूरी करें, शफा से ही, ये मतलब नहीं कि हम दुनिया भर के गुनाह करके बैठ जाएं और कहेंगे बस हमारी शफात हो जाएगी, ये तो हमने अपने आप पर भी जुल्म करा और हमने अहले बैत पर भी जुल्म करा, हमने उनका दिल दुखाया इस तरह गुनाह कर करके बार बार अल्लाह अगर कुरान में आयतें आ रही हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं, इसका कोई वजन होता है। बस आपको चाहिए कि आप दीन में एतदाल रखें, एक्सट्रीम पे न चले जाएं। वमा असलकुम अलैहि मिन अजर इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे तबलीग पर किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ, बस मेरा अजर रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। हर आदमी को, हम सबको, कोई स्पीकर हो या कोई भी हो, कोई सादा मोमिन हो, उसको किसी से कोई शिकवा ही होना चाहिए, मेरा अजर अल्लाह के पास, मेरा अजर अल्लाह के पास, किसी ने कोई डांट दिया, कोई फटकार दिया, किसी ने आपकी आपको वो बात नहीं, आपकी वो कदरदानी नहीं करी जो आपको सोचना था कि आपकी होती कदरदानी, खामोश बैठ जाए आप, खामोश बैठ जाए, आप अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा, आपके दिल में अल्लाह का नूर आएगा। ये मसले जो हमारे हर चौतरफ होते हैं, हमारा साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ मेरा ये नहीं हुआ, मेरी कदर नहीं हुई, मुझे क्यों नहीं बनाया प्रेसिडेंट, मुझे बोर्ड भी क्यों नहीं रखा, ये सब बेकार बात है। आप अपना आज अल्लाह के साथ रखें, देखें अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद शोएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन थे, तो क्या कहा, औफुल केला वला तकूनु मिनल मुखसरीन वज़ीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तक़सुन नास अशियाअहुम वला फ़ौसल फिल अर्दी मुफ़सिदीन। फिर उन्होंने तीन बातें करी, तुम नाप तोल पूरे तोल से करो और किसी को घाटा ना दो और सही तराजू से वजन करो और तुम लोगों को उनकी अशिया कम ना दो और ज़मीन में फसाद फैलाते ना फिरो। ये नेचर अल्लाह ताला ने इंसान को इस ह्यूमन नेचर फितरत पैदा करा कि किसी को चीट नहीं करे, बिजनेस में चीटिंग ना हो, क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन थे और ये अपने बिजनेस में गर्व हो चुके थे, तो इस तरीके से वो चीटिंग करते थे और आजकल चीटिंग आजकल तो पूरी दुनिया में सिर्फ बिजनेस में चीटिंग का सिवा कुछ नहीं हो रहा। जिस तरीके से पहला गुना जो बताया था लूत अलैहि सलाम का कि जिस तरह से होमोसेक्सुअलिटी हो रही है, इसी तरह बिजनेस चीटिंग हो रही है, आप कहीं भी चले जाएं सिवाय चीटिंग के कुछ नहीं है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इससे मना करा कि तुम चीटिंग मत करो, इसी को कहते हैं वला तौसल फिल अर्द मुफ्सदीन, फसाद करते मत फिरो दुनिया में। जब इमाम जमा आएंगे तो ये फसाद खत्म होगा चीटिंग का। हर आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा ले लूँ और सामने वाले का हक मार दूँ, इसलिए इस दुनिया में फसाद के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और हर आदमी चाहता है कि मैं गस्ब कर लूँ, आजकल माहौल इस तरीके से हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ज़मीन पे फसाद पैदा करती हैं। और जितने अंबिया आए या सरकार ने जो अपना मिशन आगे ला या इमाम हुसैन का जो खरूज था इस फसाद के खिलाफ था कि यजीद बादशाह बनकर बैठा था, मोरा अली की भी जंग थी माविया से कि वो सारा बैतुल माल का पैसा लेके बैठा हुआ था, वो उसके चमचे खाते थे बैठ के, दूसरे बेचारे पाई पाई को परेशान होता होते थे, इसको कहते हैं फसाद होना दुनिया में। और ये फसाद आज का दुनिया में हर तरफ फैल चुका है। तो ये चीज़ें ऐसी कि हम जब कुरान की जो आयतें पढ़ें तो आज की सोसाइटी को ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें हो रही थी उस वक्त वो क्या आज भी हो रही है, तो क्या हम मोमिन है क्या आज, क्या हम इस माहौल में अपने ईमान को बचा सकते हैं। फ़तकुल्लदी खलकुकुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन, वो उससे डरो जिसने तुम्हें वो गुज़िश्ता लोगों को पैदा किया, कहा कि तुम डरो उससे जिसने तुमको और पुरानी जनरेशन को पैदा करा, वो आगे चलेगी जनरेशन और वो हलाक हो गई, अब तुम उस अल्लाह से डरो। कालू इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन, अब उसे कोई जवाब नहीं दे पड़ा कि ये हमको क्या जवाब है कि बात वो सही कर रहे थे ना भाई, इसने क्या गलत किया था, वो कि अल्लाह से डरो और बिजनेस से फेयर डीलिंग करो। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, क्या कहा उन्होंने जवाब, जो चाहे जवाब था, क्या कहा उन्होंने, कहा आप तो एक सहरशुदा आदमी, आप तो जादू हो गया, अब जादू का क्या हो गया, जब कोई इंसान से जब मजबूर हो जाता है, दलील नहीं दे सकता, तो इस तरह की जाहिल बातें करता है इंसान, क्या आप तो जादूशुदा आदमी हो। आज उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, एक तो ये कहा तुम जादूशुदा, फिर आगे क्या कहा, वो माँ अंता अल्लाह रसूल रसूलना व इन जुन्न का मिनल काज़िबीन, आप तो हम जैसे एक बशर है और हम आपको बिल्कुल झूठा समझते हैं। तो तीन इल्जाम लगाया उन्होंने, एक तो कहा कि आप जादूशुदा हैं, दूसरा कहा आप हम जैसे आदमी हैं, तीसरा कहा आप बिल्कुल झूठे हैं, आप बिल्कुल झूठे हैं। फिर चैलेंज करा, क्या चैलेंज करा, असफ अलैना किस्फ मिन समा ई इन कुंतुम सादिकीन, फिर चैलेंज करा, क्या चैलेंज करा, अगर आप सच्चे हैं तो हमें पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे, कोई आसमान से बादल आए और हम पे गिर जाए। इस तरह का डिफेंस, इस तरह की डिफेंस उन लोगों में थी कि जब कि मालूम हो गया सच्ची बात कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर तुम सच, एक तो आप झूठे हो, आप जादू हो गया है, फिर कहा कि आप अगर सच्चे हैं तो आप एक बादल का टुकड़ा गिरा दें। काला रब्बी आलम बीमा तामलून, उन्होंने जवाब दिया मेरा रब अच्छी तरह जानता है जो तुम कुछ कर रहे हो, तो तुम ये हरकतें कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह जानता है, हमको भी अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह को मालूम हमारे अमल कितने ख़राब है, हमको तौबा करना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे बद अमलों को तो जानता है, अल्लाह तो हम तुझसे को शर्मिंदा, अल्लाह तो हमारे बद अमलों को ख़त्म कर दे, हमको तौफीक दे कि हम नेक अमल करें, ताकि हम क़यामत के दिन जब नाम आमाल पढ़ा जाए तो हमारे अच्छे अमल लिखे, ताकि हम खुश हों उस दिन। فَقَدَّمُهُ فَخَزْنَهُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ثُلَّةٍ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ, तो उन्होंने शोएब को झुटलाया तो साइबान के दिन के अजाब ने आ लिया, वो बड़े खौफनाक दिन का अजाब था। तो जब वो पहले कह रहे थे कि आसमान से कोई अजाब आ जाए तो वही अजाब आया, तो उन्होंने झुटलाया तो साइबान के अजाब ने आ लिया और वो बड़ा खौफनाक दिन का अजाब। तो क्या था साहिबान के दिन का अजाब, तफसीर में ईजान में और दूसरे तफासिर में बयान है किस तरह का अजाब था, वो अजाब इस तरह का था कि 7 दिन तक सख्त गर्मी पड़ी उस शहर में, तो लोग गर्मी से परेशान हो गए, तो 8वें दिन आसमान से बादल आया तो लोग खुश हो गए, चलो छाँव आ गई, अब छाँव में जाएंगे, तो सब लोग उस बादल के नीचे आगे खड़े हो गए, जब बादल के नीचे खड़े हुए तो बादल से बिजली गिरी और जलजला आया, आग आसमान से गिरी और जलजला आया, तमाम लोग खत्म हो गए। ये था अजाब यूमिन, दैट वाज वो अजाब था यूमिन जुल्ला, साहिबान का अजाब सख्त था। इन नफी दाले का आया तो मकान अख्तर मोमिनी वो इन अरबोल अजीज़ुल रहीम, बिलाशुबा इसमें बहुत बड़ी निशानी है लेकिन अक्सर लोग मोमिन नहीं है, और यकीनन आपका परवरदिगार वो है जो आली वो मेहरबान है। तो इस तरीके से ये कौम भी ईमान लाई, तो हमको चाहिए या आखिरी ज़माने में हम अपने ईमान को बचाएं, मोमिनीन तक्वा इख्तियार करें। और आज जिस तरीके से इस दुनिया में चौ तरफ जुल्म फैल गया है, ये आखिरी ज़माना मौला इंशाल्लाह जल्द ज़हूर करेंगे, लेकिन उनके ज़हूर के पहले हमको चाहिए कि हमारी कम्युनिटी को पाक करें गुनाहों से। अगर हम किसी से जुल्म करते हैं, हमारे बिजनेस में जुल्म करते हैं, या हम लोगों पर तादी करते हैं, या कोई बेहाई, तो उससे बचें ताकि हम इमाम के लश्कर में शामिल हों, क्योंकि इमाम के लश्कर में शामिल होना आसान नहीं है मोमिनी। हमको चाहिए हमारे कल को पाक करें, कल को नूरानी बनाए, हमें अल्लाह का नूर दिल में आए, मौला की मार्फत सही ढंग से आए, अल्लाह का तकवा अख्तियार करें। ये दीन का सच्चा रास्ता है। हम दुआ करते हैं कि मौला का जोर जल्द से जल्द हो। मौला हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं हमको दर्स देने के लिए जिस तरह यजीद के खिलाफ खड़े हुए, उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए, आज हमको चाहिए कि हम मौला के जोर के पहले इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हों जो कि ताबूती सिस्टम है, फसाद का सिस्टम है, लोगों के माल खाने का सिस्टम है, बेहयाई का सिस्टम है। इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हों। अल्लाह हाफ़िज़।